इशिका सिंघानिया वेला में आई हुई थी। उसने आदर्श से राधिका को बचाया था। इशिका का बस चलता तो वो आदर्श की जान ले लेती, लेकिन केशव ने उसे रोक लिया था। वो अपने तरीके से उसे मारना चाहता था। इस बीच मौका देखते हुए आदर्श ने अपनी जेब से निकलकर एक कैप्स्यूल खा लिया था, जिसके बाद उसे तुरंत खून की उल्टियां होने लगी। आदर्श को उल्टी करता देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़े। पास में खड़े एक गार्ड ने उसे चेक किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि अब ये बच पाएगा। हम इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच भी जाएं, तब भी डॉक्टर इसे नहीं बचा पाएंगे। आदर्श उल्टियां करते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी केशव ने बड़े भारी मन से कहा, मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक चला जाएगा। हमें मिसेस सिंघानिया को बाहर बुला लेना चाहिए। इशिका भी उनकी बात से सहमत थी। भले ही उनका रिश्ता अब खराब हो गया हो, लेकिन बीते सालों में आदर्श ने राधिका का काफी ख्याल रखा था, इसीलिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आखिरी बार जब इशिका ने राधिका को श्रुति के साथ छोड़ा था, तब वो अच्छे हाल में नहीं थी। डायरेक्ट दरवाजा खोलने से पहले इशिका ने दरवाजा खटखटाकर पूछा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सामने से कोई जवाब नहीं आया तो इशिका ने पलटकर उलझन भरी निगाहों से केशव की तरफ देखा। केशव कोई जवाब देने से पहले आदर्श ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, वो उसे ले गए, उसे लेकर आओ, वरना वो राधिका को मार देंगे। मुझे जिसका डर था वही हुआ। कौन लेके आए उन्हें और कहा? आप सारी बातें खुलकर एक ही बार में क्यों नहीं बता देते? इशिका ने गुस्से में कहा। आदर्श की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने खुद को काबू करने की पूरी कोशिश की। उसने जवाब में कहा, वो आदर्श लड़खड़ाते शब्दों ने अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था, तभी इशिका को खिड़की से चौपर के लैंड होने की आवाज़ आई। वो दौड़कर खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि कुछ आदमी राधिका और श्रुति को पकड़कर चौपर में बिठा रहे थे। केशव भी उसके साथ थे। सब कुछ काफी जल्दी में हो रहा था। इशिका को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और वो चौपर फर से अपनी उड़ान भरने लगा। केशव उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। जब उसने देखा कि कुछ लोगों ने राधिका और श्रुति को पकड़ रखा है, तो वो जल्दी से दौड़कर नीचे गया और अपनी गाड़ी में चौपर का पीछा करने लगा। इशिका वापस आदर्श के पास आई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है वो लोग? तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। आदर्श ने जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा की। वो इशिका को सब बताते हुए बोला, वो लोग मर्चेंट परिवार के लोग हैं। राधिका उनसे छुपकर यहाँ गोवा में रह रही थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने सब गड़बड़ कर दिया। ना वो गोवा आती और ना ही उन लोगों को पता चलता कि राधिका यहाँ गोवा में है। मुझे लगा कि तुम दोनों को मार दूंगा तो वो लोग राधिका का पीछा छोड़ देंगे, लेकिन देखो उस बेवकूफ़ लड़की ने क्या किया। उसने राधिका की जान खतरे में डाल दी। मर्चेंट परिवार के लोग तो मेरी माँ की फैमिली के लोग हैं, फिर वे उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ईशानी ने मेरी माँ की जान को खतरे में डाला होगा। इशिका ने जवाब दिया, उसी ने ऐसा किया है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि राधिका को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। मैंने ईशानी को उन्हें सौंप दिया था। उसके पैदा होते ही अपने किसी आदमी से उसे बच्चों को उनके पास भेज दिया था। तुम्हें बदल दिया गया ताकि गलती से भी वे तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें पहचान न सके। वे राधिका को मार देंगे, प्लीज उन्हें बचाओ। अगर तुम चाहती हो कि उसे कुछ ना हो, तो ईशानी के बारे में सब पता लगाओ। वो लड़की तुम्हें उन तक पहुंचा देगी। प्लीज मेरी राधिका को बचा लो, आदर्श ने कहा। बोलते हुए वो बुरी तरह खांसने लगा। उसने एक बार फिर से खून की उल्टी की और फिर उसकी सांसें बंद हो गई थी। आखिरी वक्त में भी उसके मुंह पर राधिका का ही नाम था। इशिका ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली थी। उसने मन ही मन कहा, कैसा घटिया आदमी है ये, इसने मेरी माँ को इतनी तकलीफें दी और अब मेरी बहन को मार दिया। उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद ये जाहिर कर रहा है जैसे इसे उनसे सच्चा प्यार हो। इशिका ने एक नज़र आदर्श के चेहरे की तरफ देखा। उसे अब तक लगता था कि मालविका उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली मास्टरमाइंड तो खुद आदर्श था। बचपन में जब इशिका 4 साल की थी, तब आदर्श घर पर आया था। उसे लगा कि आदर्श उसे मालविका से बचा लेगा। बहुत मासूमियत से उसने आदर्श का हाथ पकड़कर उसे पापा कहा, लेकिन आदर्श ने उसका हाथ झटक दिया और मालविका को बुलाकर उसे बुरी तरह डांटा। उसे ये तक कहा कि आगे से उसे इशिका को उसके घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसी के बाद मालविका ने इशिका को बेच दिया था। इशिका ने खुद को संभाला और केशव को कॉल किया। उसने पूछा, आदर्श सिंघानिया मर गया है, क्या आपको पता चला कि वो मिसेस सिंघानिया को कहाँ लेकर गए हैं? मैं नहीं जानता, मेरे आदमियों ने उन्हें आखिरी बार समुद्र के पास उड़ान भरते हुए देखा था। उसके बाद वो चौपर उनकी नजरों से गायब हो गया, केशव ने मायूसी से कहा। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैंने ईशानी की जगह लेने का सही फैसला किया है। अब वही है जो मेरी माँ तक मुझे पहुँचा सकती है। वहां से जाने से पहले इशिका ने पुलिस को कॉल किया। आदर्श ने आत्महत्या की थी, इस वजह से सारा मामला वहीं संभाल रहे थे। इशिका ने इस मामले में ज्यादा पढ़ना सही नहीं समझा और अपना स्टेटमेंट देने के बाद वहां से बाहर आ गई। इन सब के बीच कैसे पूरा दिन बीत गया, इशिका को पता ही नहीं चला। बाहर हल्का अंधेरा होने लगा था। इशिका के पास तरुण का कॉल आया। उसने पूछा, तुम कहाँ रह गई हो, वापस घर क्यों नहीं आई? बस कुछ देर में पहुंच रही हूँ, इशिका ने जवाब दिया। इशिका ने वहां से टैक्सी ली और होटल जाने के लिए पहुंच गई। वहीं तरुण इस वक्त होटल में अपने रूम में था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ अभिमन्यु भी था। तरुण ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, वो लड़की थोड़ी देर में आने वाली है, उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि वही आपकी पत्नी है। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वो तरुण के साथ उसके होटल आ गया था।
अभिमन्यु भी इस सच का पता लगाना चाहता था। आखिर तरुण ने यह क्यों कहा कि इशिका जिंदा है? अभिमन्यु वहां बैठा हुआ था, तभी तरुण ने उसे एक ग्लास जूस पकड़ाते हुए कहा, उसे आने में एक घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक आप यहाँ बैठिए और ये जूस पी लीजिए, आपको प्यास लगी होगी। अभिमन्यु ने उसकी बात मानते हुए जूस पी लिया। अभिमन्यु को कमरे में छोड़कर तरुण बाहर आ गया। उसने माया से कहा, मॉम आपने सारी तैयारी कर ली है ना? मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से जाए। बिल्कुल नहीं जाएगा, मैंने मिस्टर राजवंश के जूस में ड्रग्स मिला दिया था, उस लड़की के आने के बाद मैं उसे खुद से हैंडल कर लूंगी, माया ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। वे दोनों बात कर रहे थे तभी रूही के रोने की आवाज आई। उसके रोने की आवाज से इरिटेट होकर माया ने चिढ़कर कहा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन इस शैतान लड़की को मुझसे दूर रखो, जब देखो रोती रहती है। अच्छा ठीक है, उसे मैं देख लेता हूँ, बस मेरे प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की अब हमें छोड़कर कहीं भी जाए, तो प्लीज देख लीजिएगा, तरुण ने कहा और वहां से रूही के पास चला गया। माया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो इशिका के आने का इंतजार करने लगी। उसने खिड़की से देखा कि इशिका टैक्सी से बाहर निकली है, तो वो जल्दी से अपने कमरे में गई। इशिका के ऊपर पहुंचते ही माया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। माया ने थोड़ा नरमी से कहा, आज रूही ने कुछ नहीं खाया है, मैंने उसके लिए बेबी फूड तैयार भी किया था, खाना तुम ही लेकर आई थी, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया था? नहीं, मैंने डेट चेक की थी, आप खाना मुझे दीजिए, मैं रूही को खिला देती हूँ, इशिका ने जवाब दिया। उसकी आवाज से वो काफी थकी हुई और मायूस लग रही थी।
इशिका के कहते ही माया ने अपने हाथ में एक प्याला उठाया। वो एक प्याले में रूही का खाना पहले ही भरकर खड़ी थी। इशिका को प्याला देते हुए माया ने कहा, पहले तुम इसे खाकर देखो, उसके बाद ही मैं इसे रूही को खाने दूंगी, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तभी मेरी पोती वो खाना खाएगी। इशिका ने माया की तरफ देखकर आइस रोल की। उसे माया पर शक हो रहा था। माया, जिसे रूही के जीने या मरने का फर्क नहीं पड़ता था, वो आज अचानक उसके खाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीन क्रिएट कर रही थी। दिन भर के ड्रामा से इशिका काफी थक चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे रूही के खाने से 4-5 बाइट खाए और फिर माया से कहा, अब तो ठीक है ना, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है और ना ही ये एक्सपायर्ड है। तुम तो बुरा मान गई, माया ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, लगता है पूरे दिन की दौड़ भाग से काफी थक गई हो, ऐसा करो जाकर आराम कर लो, आज रूही को मैं देख लूंगी। लेकिन, इशिका ने बोलना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माया ने उसे पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया था। उसकी इस हरकत पर इशिका कुछ कह पाती उससे पहले माया ने आई विंक करके कहा, मुझे पता है तुम ईशानी की दोस्त नहीं हो और एक अनाथ हो, तुम्हें हमेशा के लिए रहने के लिए हमारा घर मिल सकता है, बस अंदर मौजूद आदमी को आज रात के लिए निराश मत करना, उसके हर तरीके से सेवा करना। इतना कहकर माया ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। इशिका माया के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसे माया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसे अपने सामने चीजें घूमती हुई दिखाई देने लगी। इशिका कमरे के अंदर गई तो सामने अभिमन्यु खड़ा था, जिसे देखकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इशिका ने कहा और धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास जाने लगी। इशिका लड़खड़ाने वाली थी, तभी अभिमन्यु ने उसे थाम लिया था। इशिका पर हल्का हल्का ड्रग्स का असर होने लगा था, कुछ वैसा ही हाल अभिमन्यु का था। इशिका को देखते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और इमोशनल टोन में कहा, इशिका तुम सच में जिंदा हो, फिर सब लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम मर गई? तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। अभिमन्यु, मैं जिंदा हूँ और मैं भी अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, इशिका ने मदहोश आवाज में कहा। ड्रग्स के नशे में अभिमन्यु और इशिका दोनों ही भूल चुके थे कि वे इस बात को जानते हैं कि इशिका जिंदा है। वहीं बाहर माया और तरुण अपने प्लान के साथ पूरी तरह तैयार थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कल के एपिसोड में अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर रेटिंग और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मैसेज करके बता दीजिएगा।